ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। दिव्य ज्ञान की व्याख्या इस चौथे अध्याय में, और पिछले हमारे कुछ तीन बुधवारों से हम इस अध्याय का जो सुप्रसिद्ध श्लोक है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये श्लोक सुप्रसिद्ध इसलिए है कि इसके ऊपर बहुत टीकाएं हमारे आचार्यों ने दी हैं। टीकाएं इसलिए इतनी दी हैं क्योंकि भगवान ने इन चार लाइनों में इतना गुह्य ज्ञान समा कर दे दिया है कि चार सिटिंग या पांच सिटिंग तो बहुत कम है। जैसे हम कहते हैं कि यदि उम्र भर भी हम इस एक श्लोक के ऊपर चर्चा करने बैठें तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी। घबराइए मत, पूरी उम्र भर आपको यहां पर हम इसी एक श्लोक पर नहीं बिठाएंगे। भाग चौथा है और एक और भाग होगा, पांचवा भाग भी होने वाला है। तो आज केवल हम धर्मस्य इस शब्द को पूरा करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो हमने यदा यदा ही इन तीन शब्दों की व्याख्या सुनी। जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। और पिछले बुधवार और उसके पिछले बुधवार से हम धर्मस्य इस शब्द की व्याख्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पांच परिभाषाएं श्री प्रभुपाद द्वारा दी गई धर्म की, डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सेकंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर ह्यूमंस, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ सोल, फोर्थ कल्चर विच डिस्क्रिमिनेट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स, फिफ्थ प्रिपरेटरी कोर्स टू प्रिपेयर फॉर डेथ एंड सिक्योर अवर नेक्स्ट लाइफ। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। हित उपदेश, वो उपदेश जो हमारे हित के लिए निर्धारित है, ऐसे हित उपदेश में बताया गया है कि हम मनुष्यों की विशेषता है कि हम विशेष धर्म का पालन करें। केवल जीवन यापन करना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये भी एक धर्म है, ये शारीरिक धर्म है, परंतु अधिको विशेषो, हितोपदेश में ये जो अधिको विशेषो कहा गया है, तो हम मनुष्य जो कि विशेष योनि हैं, बाकी जानवर योनियों के तुलना में हमें विशेष धर्म का पालन करना है, जो कि आत्मा के स्तर पर सच्चिदानंद स्वरूप हमारा जो है उसके स्तर पर जो धर्म हमें पालन करना है वो है इस मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य। तो हमने चार पॉइंट इसमें से डिस्कस कर चुके हैं और हम श्रील प्रभुपाद द्वारा दी गई ये पांच परिभाषाएं धर्म की अंतिम परिभाषा पर हैं, प्रिपरेटरी कोर्स टू प्रिपेयर फॉर डेथ एंड सिक्योर नेक्स्ट लाइफ। अब कोर्स, श्रील प्रभुपाद ने यह शब्द इस्तेमाल किया है, एज इट इज प्रभुपाद के शब्द हम यहां पर दोहरा रहे हैं, प्रिपरेटरी कोर्स, वो कोर्स, दैट कोर्स विच प्रिपेयर्स अस फॉर समथिंग, फॉर व्हाट? डेथ, हाउ टू मीट डेथ, एंड देन हाउ टू सिक्योर लाइफ आफ्टर डेथ। अब देखिए, इस संसार में मृत्यु के बारे में लोग चर्चा नहीं करना चाहते, लोग मृत्यु शब्द से इतना डरते हैं, मृत्यु तो छोड़ दीजिए, और मृत्यु इसकी चर्चा भी यदि कोई प्रारंभ करता है जीवित अवस्था में, जब सभी जीवित हैं, तो एक प्रकार का अपशकुन मानते हैं लोग, मृत्यु के बारे में डिस्कस करना लोग कहते हैं अपशकुन है। श्रील प्रभुपाद के अनुसार उन्होंने हमें समझाया है, ये जो जीवित अवस्था हमारी है ये तैयारी है, तैयारी, हम सब तैयारी में हैं, प्रिपरेशन। अब सब तैयारी तो कर रहे हैं, परंतु किसकी तैयारी? आप लोग कहोगे नया साल शुरू हुआ है, आप बोल रहे हैं मृत्यु की तैयारी, हम तो नव वर्ष की शुभकामनाएं कि और जीते रहो, फलो फूलो, दूधो नहाओ, ये सब हम सुनना चाहते हैं, कितना अच्छा लगता है कानों को, फलो फूलो, दूधो नहाओ, ये सब कुछ। मृत्यु, डेथ, उसका साउंड वाइब्रेशन कितना भयावह है, मौत, कोई भी भाषा में आप बोल लीजिए, कत्ल, मौत, मृत्यु, डेथ, तो डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि छिन जाएगा मृत्यु जो है इस संसार में, जो कुछ तैयारी हम मृत्यु के अलावा करते हैं मृत्यु उसे छीन लेती है। तो अधिकांश हम देखते हैं लोग मृत्यु की तैयारी छोड़कर मृत्यु के अलावा जो कुछ है, जो मृत्यु छीलने वाली है, उसकी तैयारी करते रहे। भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा हैज सेड समथिंग वेरी वंडरफुल, लाइफ इज अ क्वेश्चन नो वन कैन आंसर, डेथ इज दैट आंसर नो वन कैन क्वेश्चन। जैसे हम हमारे संडे के भागवतम क्लास में हमारे एक फायरिंग ऑफिसर का एक कोट कोट कर रहे थे, तो उनका एक ये शेर था, हमारे कंधों को सशक्त बनाते हुए उन्होंने ये शेर कहा, जिंदगी जीना है तो अपने कंधों पर जियो यारों, औरों के कंधों पर तो केवल मुर्दों के जनाजे निकलते हैं। अपने और हमको सुनाया जाता था वक्त, वक्त और स्कूल का टीचर दोनों सिखाते हैं। दोनों में फर्क क्या है? वक्त और स्कूल के टीचर के सिखाने में फर्क क्या है? स्कूल का टीचर पहले सिखाता है फिर इम्तिहान लेता है, वक्त इम्तिहान दे दे कर सिखाता है। इसलिए कहते हैं कि किस्मत वालों को समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि समय पर समझ नहीं आती, और समय और जब तक समझ आती है समय निकल जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो धर्म की व्याख्या यहां पर कर रहे हैं कि तैयारी शुरू कर दो, और प्रभुपाद अपने मॉर्निंग वॉक कॉन्वर्सेशन में कोट करते हैं प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज जो केवल 5 वर्ष के थे, यहां पर 5 वर्ष के बालकों को हम कहते हैं लॉन में जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 वर्ष के बालकों को क्या करना चाहिए कि वहां से कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, कि धर्म का पालन 5 वर्ष की अवस्था से शुरू कर देना चाहिए। और प्रभुपाद प्रहलाद महाराज के इस श्लोक को कोट करते हुए कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि 5 वर्ष की उम्र से मृत्यु की तैयारी शुरू। अब आप लोगों को लग रहा होगा मृत्यु की तैयारी, जनरली मृत्यु की तैयारी किसे कहते हैं आजकल लोग? तिरड़ी तैयार करो, चिता तैयार करो, वो तो केवल एक फिजिकल एक्ट है, इससे गहराई में हमें जाना है। तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, जो उदाहरण से हम प्रारंभ करेंगे ये 5वां पॉइंट। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है एग्जाम टाइम चल रहा है ना कि खत्म हो गया? हाँ? चल रहा है, हर समय चलता रहता है एग्जाम टाइम, इम्तिहान हर समय चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो इस श्लोक में कहा गया ये दुर्लभ मनुष्य जीवन जो कि क्षण भंगुर है, और ये क्षण भंगुर का अर्थ क्या है? हर क्षण मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, हर क्षण मर रहा है। अभी हम बैठे हैं, कितने क्षण बीत गए? उतने क्षण ये शरीर जो है मर चुका। मेडिकल साइंस भी कहता है जो सेल्स हैं हमारे शरीर के मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो कहा गया है कि यदि क्षणभंगुर है ये शरीर हमारा, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन यदि क्षणभंगुर है तो हर क्षण इम्तिहान है। तो ये नहीं समझना कि बस बच्चों का एग्जाम हो रहा है खत्म हो गया, हमारे तो पहले ही कभी के खत्म हो गए। हर क्षण इम्तिहान चल रहा है। तो इम्तिहान का समय हम सबको याद है, प्रभुपाद के एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं, स्कूल का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम लेते हैं यदि, तो बोर्ड एग्जाम आजकल तो 2 साल पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो कितनी तैयारी, और एग्जाम कितने दिन का होता है? 1 हफ्ते 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन, और उसकी तैयारी सालों साल। देखिए, इसके विषय में मैं थोड़ा सोच रहा था कि जो इम्तिहान परीक्षा होती है उसमें कुछ ही पन्नों पर आप लिखते हो, सप्लीमेंट्स ले लेके कितना भरोगे एक क्वेश्चन पेपर, 3 घंटा कुछ ही पन्नों को आप उस पर लिखकर भरते हो, परंतु उन कुछ पन्नों पर लिखने के लिए आपको कितने पन्ने पढ़ने पड़ते हैं? और कई बार समझ में नहीं आता कि वो एक जो एग्जामिनर पन्ना देगा, कौन सा पन्ना? क्वेश्चन पेपर, तो वो पन्ने में इतने सारे पन्नों में से क्या पूछा जाएगा। इसलिए साल भर पन्ने पे पन्ना, पन्ने पे पन्ना। और फिर होता क्या है कि जो लोग पन्ने पे पन्ना साल भर नहीं पढ़ते, फिर वो जेब में पन्ने लेकर आते, और कई तो इतने पन्ने लेकर आते हैं कि कौन से जेब में, कौन से जुराब में, कौन से इसमें कौन सा पन्ना है, उसके लिए एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स वो अलग पन्ना होता है। तो अब देखिए, हम लोग ये जो एग्जाम का एक्सपीरियंस किए हैं, इतना सब लोग किए ना, हा? कि बिना एग्जाम पास हो के ही तो डिग्रियां मिली है ना सबको, तो कितना वो एक ऐसा लगता है कि सुमेरु हिमालय पर्वत से भी बड़ी चोटियां पार करनी है हमको, कंपटीशन, इतनी जद्दोजहद, परेशानी, कठिनाई, ये ट्यूशन, वो कोचिंग क्लास, ये डाइजेस्ट, वो 21 सेट्स, क्या क्या हुआ करता था, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस। और कई बार तो देखे मोस्ट लाइकली, तो पूरी किताब तो उसमें उतार दी, ऊपर लिखा है मोस्ट लाइकली, तो फाइनली वो उसमें होता है क्या, एवरीथिंग इज मोस्ट लाइकली। और कई ऐसे एग्जामिनर होते हैं वो तो ऐसे वो परीक्षा का पेपर सेट करते हैं जानबूझ के, कि ढूंढ ढूंढ कर कंफ्यूज करें विद्यार्थी को, कंफ्यूज करें। प्रकृति भी इसी प्रकार से काम करती है। हमारी तैयारी तो प्रभुपाद ने जो उदाहरण दिया है परीक्षा का, तो कलयुग में धर्म से हमें तैयारी करनी है मृत्यु और मृत्यु के पश्चात के जीवन की। तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन जिसे कहते हैं, वो क्या है? तैयारी। तो आपको एक नमूना प्रस्तुत करना चाहेंगे, छोटा सा वीडियो है। कलयुग में शिक्षक तैयारी किस प्रकार से करा रहे हैं इम्तिहान की, थोड़ा सा आगे के लाइट्स। तो ये एक उदाहरण है कि कलयुग की तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं।
दूसरा, कभी भी व्हेन यू पीपल आर राइटिंग द आंसर, डोंट राइट 1, 2, 3, गेटिंग नॉट। मैंने आपको नहीं बताया, इकोनॉमिक्स के पेपर में नंबर्स लिखने का ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर होते हैं ना वो बहुत कंजूस होते हैं, मार्क्स नहीं देते, गेटिंग नॉट। ऑलवेज यू शुड स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं लिखने का, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने का, कंक्लूजन पे खत्म करने का। देखो अपना इंडियन इकोनॉमी ऐसा है, पैकिंग अच्छा है ना, अंदर कचरा बेचो चलेगा, बाहर से अच्छा दिखना चाहिए, बराबर है ना, गेटिंग नॉट। पैकेजिंग शुड बी वेरी गुड, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पैकिंग का काम करता है. सॉरी, तो हमको ही पता है, एसवाईजीसी में बताया था मेरा वरना, और अंदर पॉइंट्स लिखने का. बट आप लोग क्या करते हैं, यू ऑलवेज राइट 1 2 3 4 5 6. अब देखो 8 मार्क का आंसर है तो कम से कम 8 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. अब है ना, ऐसे एग्जामिनर मैं देखते ही समझ जाता हूं इसने 6 पॉइंट लिखे, मैं देखते ही समझ जाता हूं उसने 6 पॉइंट लिखे. तो 8 में से अगर 8 भी लिखते हैं तो 6 पॉइंट 6 मार्क्स से ज्यादा मिलते नहीं है. आई एम गोइंग टू गिव यू 5 मार्क्स. बराबर है, गेटिंग इट नॉट गेटिंग? तो है ना, नंबर लिखने का ही क्यों, एबीसीडी लिखो ना, किसको पता 6 पे एफ आता है. है ना, समझ में आया कि नहीं, एबीसीडी लिखने का. Have you understood? Samjha? Now, don't write numbers. लिखना तो अपने को वही है जो आप लोगों ने लिखना है, एबीसीडी लिखने का. अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर वो गिन लेगा तो वैसे ही 5 मिलने वाले थे, बाद में 5 ही मिलेंगे. बट नहीं गिना तो शायद 6 मिल जाए. वी आर इन विन विन सिचुएशन.
तो ये देखिए, ये एक एक्चुअल लाइव वीडियो है. इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये तैयारियां की जा रही है इम्तिहान की. तो सोचो, गुरु चोर चंडाल चेला, नरक में जाए ठेलम ठेला. तो इसलिए जब ऐसे सिखाया जा रहा है तो विद्यार्थी भी ऐसे ही निकल रहे हैं. एक स्कूल के इंटरव्यू में प्रिंसिपल बच्चे से पूछता है, इन विच बैटल टीपू सुल्तान डाइड, इन हिज लास्ट बैटल. ये आंसर देता हूं, इन विच बैटल टीपू सुल्तान डाइड, इन हिज लास्ट बैटल. When was Mahatma Gandhi born? On his birthday. Where was the Declaration of Indian Independence signed? Bottom of the page. भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां पड़ती है? शराब के ग्लास में. तो ये सारे जो ऐसी तैयारियां करा रहे हैं, तो बदले में उनको प्रत्युत्तर भी इस प्रकार का मिल रहा है. तो यहां जब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, डेथ इज एन एग्जामिनेशन, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, तो अब ये हमने हमारे जो एक रिवाइवल कोर्स था अभी हाल ही में, उसमें ये प्रश्न पूछा था, व्हाट डज इट टेक टू पास एनी एग्जाम. तो डेफिनेटली तैयारी. अब तैयारी प्रिपरेशन जो है, उसके अलग अलग डेफिनेशंस हो जाते हैं. क्या प्रिपेयर कर रहे हो आप, कॉपी करना है प्रिपेयर कर रहे हो, या साल भर ईमानदारी से जैसे कि विद्यार्थी को प्रिपेयर करना वो प्रिपेयर कर रहे. तो हमने जब ये प्रश्न पूछा तो अलग अलग उत्तर मिले हमको ऑडियंस से. तो एक हमने हमारी तरफ से प्रस्ताव रखा, पेन. एग्जाम पास करने के लिए क्या पेन की आवश्यकता पड़ती है? लिखना है, कलम, कलम से लिखोगे. तो यदि ये आपके सामने एक प्रस्ताव रखा जाए कि कोई विद्यार्थी है वो ये समझता है कि एग्जाम पास करने के लिए खाली पेन, अच्छा पेन होना जरूरी है, बस अच्छा पेन मिल जाए तो एग्जाम पास हो जाए, आपको क्या लगता है, बुद्धिमानी है? आपको लग रहा होगा कि ये क्या उदाहरण दे रहे हैं, इसके इस उदाहरण के पीछे का तात्पर्य समझिए. जिस प्रकार से कोई विद्यार्थी यदि केवल इस भ्रम में रहे कि कि मुझे साल भर केवल अच्छे से अच्छे पेन इकट्ठा करना है एग्जाम पास करने के लिए, और एग्जाम हॉल में वो घुसता है मुट्ठी भर पेन लेकर, अलग अलग प्रकार के सबसे कीमती अलग अलग रंगों के पेन लेकर घुस रहा है। उनको बता दीजिए जहां से आवाज आ रही, तो पेन लेकर घुस रहा है वो, ये समझते हुए कि यही एकमेव तरीका है एग्जाम पास करने का। अब ये जो इतने सारे पेन वो इकट्ठा करता है उसकी तुलना, तात्पर्य क्या है, मॉरल क्या है इस एग्जाम्पल का, तात्पर्य ये है कि यदि मृत्यु वो इम्तिहान है, वो परीक्षा है, तो जीवन भर केवल पैसे इकट्ठा करना और पैसों से जो वस्तु खरीदी जा सकती है उसको इकट्ठा करना पेन इकट्ठा करने के समान है। देयर इज नो यूज सिंपली कलेक्टिंग ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन इफ यू डू नॉट नो व्हाट टू राइट विद दैट पेन। सिमिलरली accumulating money and things which money can buy all through your life, not knowing what to do with that wealth is as foolish as that student who is simply collecting pens thinking this will make me clear the exam. To log taiyari kya kar rahe hain, isi ki taiyari kar rahe hain ki कितना मैं मरने से पहले इकट्ठा कर लूं, कितनी जायदाद इकट्ठा कर लूं, कितना खजाना इकट्ठा कर लूं, शोहरत क्या कुछ, नाम इत्यादि, ये सारी चीजें जो मृत्यु सबसे पहले, जो ये शरीर से संबंधित वस्तुएं हैं, नाम शोहरत दौलत इत्यादि, ये सब कुछ जो ले जाने वाले हैं, मृत्यु जो ले जाने वाली है और उसकी तैयारी में सभी लगे हैं। तो इसलिए अभी हम आपको एक और छोटा सा वीडियो दिखाएंगे जिसके अंदर कोई जब तैयारी कर आया है परंतु एग्जामिनेशन हॉल में उसकी भ्रमित अवस्था से क्या निष्कर्ष निकलता है उसकी तैयारी का, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। इस पर हम थोड़ा इलैबोरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद ने काफी जगह पर ये एग्जाम्पल को इस्तेमाल किया है। कौन से एग्जाम्पल को, लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन।
Your revision?
Oh, yes. I've concentrated on trigonometry.
I've done calculus mainly.
I believe they concentrated on calculus last year. Oh. Oh dear.
Quiet, ladies and gentlemen, please. The exam will commence in 2 minutes. Ladies and gentlemen, you may open the envelopes containing your papers. The exam starts now. Thank you. 2 minutes, ladies and gentlemen. At the end, would those who answer the green calculus papers please put them in the green box? And those who answer the white trigonometry papers, please put them in the white box. Stop writing, please. I said stop writing. Will you stop writing?
Hare Krishna. तो हमें तो केवल ये कॉमेडी लग रहा होगा, परंतु जीवन की सच्चाई ये है कि कई बार, बहुत बार जीव की तैयारी परीक्षा की इस प्रकार से होती है, और जब इम्तिहान का समय आता है तब गलत पेपर के आंसर, और वो भी दूसरों के आंसर। इसलिए हमने एक हमारे सुबह के क्लास में कहा था कि संसार में जितने जीव हैं उन सब जीवों का मृत्यु के समय जो एग्जाम होता है, वो एग्जामिनेशन पेपर सबका अलग है। तो सबको अपनी अपनी तैयारी करनी है उस फाइनल एग्जाम के लिए। यू कांट एक्सपेक्ट टू कॉपी फ्रॉम समवन एल्स। तो यहां पर आपने देखा होगा कि कितने पेन इकट्ठा किए थे उसने, और क्या उसकी तैयारी थी, और अंत में जब उसको पता लगा कि एक सिली मिस्टेक की वजह से, दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेज, महतो भयात, वन सिली मिस्टेक, यू फेल इन द एग्जाम, ग्लाइड डाउन इनटू द एनिमल स्पीशीज। और इसके ठीक विपरीत, यदि स्वल्पम धर्मस्य, धर्म की चर्चा हम कर रहे हैं, स्वल्पम धर्म का कोई पालन करता है तो उसको उस महान भय से भगवान बचाते हैं, या धर्म उसे बचाता है। तो धर्म, इसकी एक और बहुत सुंदर व्याख्या हुई है। यदि हम इस शब्द का विच्छेदन करें तो धर और म, इसे धर्म शब्द बनता है, और बलदेव विद्याभूषण बहुत सुंदर तरीके से धर्म की ये बहुत ही अनोखी व्याख्या देते हैं। उनके अनुसार धर का अर्थ है धारण करना या रक्षा, रक्षा करना, और मैं आप समझ गए होंगे मृत्यु। तो बलदेव विद्याभूषण के अनुसार और श्रील प्रभुपाद ने जो पांचवी परिभाषा दी है कि धर्म की व्याख्या क्या है, जो हमें मृत्यु के समय और मृत्यु के पश्चात हमारी रक्षा करे, धारण करे, वो है धर्म। दैट विच प्रोटेक्ट्स अस एट द टाइम ऑफ डेथ एंड सिक्योर्स अवर नेक्स्ट लाइफ, दैट इज धर्म अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद एंड बलदेव विद्याभूषण। तो वह वस्तु जो मृत्यु के समय अथवा मृत्यु के पश्चात हमारी रक्षा करे उसे कहते हैं धर्म। अब हमने हमारे कॉर्पोरेट सेमिनार में इसकी चर्चा की थी, तो आज के इस धर्म की व्याख्या के संदर्भ में फिर से जो मनुष्य जीवन के चार स्तर हैं, फोर लेवल्स ऑफ प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग्स बेस्ड ऑन धर्म, वो क्या है? रिपेंट, रिपेयर, प्रिवेंट एंड प्रिपेयर। तो अक्सर जो धर्म का पालन नहीं करते, जो मनुष्य जो लास्ट रंग है इस सीढ़ी का, जो सबसे निचला पायदान है इस सीढ़ी का, वो है रिपेंट। धर्म का पालन नहीं करने की वजह से विलाप, विषाद, उसी के अंदर रहना। और हां, कईयों को जब ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि के वजह से जब ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, तब रिपेयर मोड में हो जाते हैं और धर्म का ही इस्तेमाल कर उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। परंतु अज्ञानवश बहुत से इस संसार में विलाप कर रहे हैं धर्म का पालन नहीं करने की वजह से, नहीं जानते कि क्यों कठिनाई परेशानी में है, परंतु सहारा लेते हैं रिपेयर किसका? धर्म का नहीं, फिर से उन्हीं वस्तुओं का जो कि उनको उस परेशानी में डाली। जैसे पंचतंत्र में एक कहानी है, एक लोमड़ी थी और ये लोमड़ी हर समय वन के अंदर घूमती फिरती, कुछ बहुत ही चटकदार खाने की। तो उसने अचानक एक मटका देखा, उस वन में उसने मटका देखा जो पहले कभी नहीं देखा था उसने। जैसे होता है ना, कोई नया होटल खुला है जो पहले नहीं था वहां पर, तो तुरंत कस्टमर वहां पर जाने की इच्छुक हो जाते हैं। तो वैसे ही इस लोमड़ी के लिए उस जंगल में वो मटका एक नया होटल खुला, तो उसने तुरंत मटके के अंदर अपना एक हाथ डाल दिया आगे वाला, और उसके अंदर गोंद था तो उसका एक हाथ चिपक गया। अब उस एक हाथ को निकालने के लिए उसने अपना दूसरा हाथ डाला, दूसरा भी चिपक गया, फिर पीछे के दो पैर, वो एक चौथा सब डाल दिया, अब पूरा का पूरा उस मटके के अंदर वो अटका हुआ। तो पंचतंत्र में ये कहानी बताई गई है, उसी प्रकार से बद्ध जीव इस भौतिक संसार में गलत लोगों का, गलत योजनाओं का सहारा लेता है, जो उस मटके के समान है जिसमें वो गोंद भरा हुआ है, और अपने आप को बांधता जाता है। पहले से वो भूखा था, अब बंध गया उस मटके के अंदर, अब लेकर क्या करेगा वहां पर खड़े खड़े। तो ये जीव का हाल है। इसलिए यहां पर हम ये जो चार लेवल्स की चर्चा कर रहे हैं कि धर्म का पालन नहीं करने की वजह से किस स्थिति में इंसान रहता है, मनुष्य रहता है, और फिर धर्म का पालन करने से कैसे वो इस मनुष्य रूपी सीढ़ी के पायदान पर चढ़ चढ़कर कौन से लेवल तक पहुंचता है, प्रिवेंट एंड प्रिपेयर। तो हमने ये उदाहरण इसके साथ साथ पहले भी दिया है कि जैसे एक ट्रैफिक पुलिस है, यहां पर आप देखो कि ये ट्रैफिक पुलिसमैन ये जो दो इशारे कर रहा है, तो दोनों इशारों से और पिछली जो स्लाइड हमने दिखाई उसे क्या समझ में आ रहा है? ट्रैफिक पुलिस जनरली यदि ड्यूटी पे होते हैं तो क्या करते हैं, ट्रैफिक को कैसे संभालते हैं? कि वो आप देखो यहां से वो ट्रैफिक को कह रहा है आने के लिए और यहां से रोक रहा है। बेसिक ट्रैफिक को रेगुलेट करने का प्रिंसिपल। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें हमारे जीवन का ट्रैफिक पुलिसमैन बनना है, ये जानना है कि किन चीजों को हम अलाउ करें, कौन से ट्रैफिक को हमारे जीवन में अलाउ करें और कौन से ट्रैफिक को रोकें। यदि ये ऐसे ऐसे करेगा, चलो 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 चलो, या कोई मत चलो, तो कई बार क्या होता है, दो एक्सट्रीम्स होते हैं। जो ज्ञानी ब्रह्मवादी होते हैं वो दोनों हाथ ऐसे, कर्मी जो होते हैं मटेरियलिस्ट भौतिकतावादी, चलो सब जहां मन चले वहां गाड़ी चलाओ, तुम यहां जाओ तुमको यहां जाना वहां जाओ, तो फिर वो क्या होगा, केओस जिसको कहते हैं। इसलिए यहां पर वो जो दो पायदान, प्रिवेंट एंड प्रिपेयर, द ट्रैफिक पुलिसमैन इज प्रिवेंटिंग ट्रैफिक ऑन वन लेन व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रैफिक ऑफ द अदर लेन टू प्रोसीड फर्दर एंड देन वाइस वर्सा। दिस इज हाउ ट्रैफिक इज कंट्रोल्ड। उसी प्रकार से हमारे जीवन का ट्रैफिक हमें धर्म में क्या चीज बताई गई है करने के लिए, व्हाट टू प्रिवेंट एंड देन हाउ टू प्रिपेयर, साइमल्टेनियसली वी हैव टू लुक इन टू। इसलिए दो प्रकार के लोग इसमें हैं। हमारे मैनेजमेंट सेमिनार में हम इसकी चर्चा करते हैं, प्रोएक्टिव पीपल, रिएक्टिव पीपल। सो प्रोएक्टिव पीपल दे प्रिवेंट एंड प्रिपेयर, रिएक्टिव पीपल दे सिंपली कीप रिपेंटिंग एंड होल लाइफ दे सिंपली कीप ऑन रिपेयरिंग रिपेयरिंग रिपेयरिंग, केवल मरम्मत करना मरम्मत करना। जैसे होते हैं ना, कई बार कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, शराब पी ली, बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली इतनी सारी, उसके बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं मरम्मत कराने के, तो फिर कि काश मैं इतनी शराब नहीं पिया होता, काश मैं इतनी सिगरेट या इतनी बीड़ी नहीं पिया होता, तो डॉक्टर फिर थोड़ा थोड़ा यहां वहां मरम्मत करते हैं और उसको कहते हैं कि फिर शराब को हाथ मत लगाना, फिर से उस बीड़ी और सिगरेट को हाथ मत लगाना। उसको क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर अब प्रिपेयर कर रहे हैं कि ठीक है तू थोड़ा अपना स्वास्थ्य को सुधार, तब जाकर नॉर्मल जीवन जी पाएगा। परंतु जो प्रोएक्टिव होते हैं, जिसको कहते हैं दूरदर्शी, हिंदी में उनको क्या कहेंगे, दूरदर्शी का अर्थ वो नहीं जो दूरदर्शन देखते हैं, पहले ही समझा देते हैं, दूरदर्शी का अर्थ है जो आगे की सोचकर अपना अभी का वर्तमान सुधारते हैं भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। तो धर्म के जो दो रहस्य, हमने ये जो दो मुद्दे लिए प्रिवेंट और प्रिपेयर, इसके दो सीक्रेट्स हैं, विल पावर एंड वोंट पावर। अब देखिए, हमें लगता होगा कि क्या धर्म हमें बाधित कर रहे हैं, किसी भी धर्म का पालन यदि कोई व्यक्ति कर रहा है। देखिए, धर्म नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक प्रकार के नकारात्मक स्थिति आ जाती है, क्यों, थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब मेरी जो स्वतंत्रता है उसके अंदर कुछ बंधन आ जाएगा। जैसे कई बार लोग लिखते आई डोंट फॉलो एनी रिलीजन, तो हमको लगता है क्या फ्री वर्ड है, तो वो क्या है, ट्रैफिक पुलिसमैन बोल रहा है जहां जाना है जाओ, तो वो ट्रैफिक बहुत भयावह ट्रैफिक होगा। जब हमको पता है कि यहां पर मेरे लिए ग्रीन सिग्नल है तो कहीं के लिए रेड सिग्नल है, इसलिए मैं इत्मीनान से ड्राइव कर सकता हूं। सो इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो टर्म्स यूज किए धर्म और रेगुलेशन के विषय में, श्रील प्रभुपाद ने उसको बहुत सुंदर तरीके से अंग्रेजी में अनुवाद किया है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, कि वो धर्म जो हमें मुक्त करे, फ्रीडम दे, वो अनुशासन, वो धर्म, वो तपस्या। तो इसलिए विल पावर के विषय में तो बहुत हम सुनते रहते हैं, पावर ऑफ विल, विल पावर इत्यादि। उसके साथ साथ मनुष्य जीवन में हमें धर्म ये भी सिखाता है वोंट पावर, कहां पर मना करना है आपको, किस चीज के लिए मना करना है। मुझे याद है जब पहली दफा हम लोग पास आउट होकर हमारे पार्टी हुई थी, पास आउट की पार्टी जिस यूनिट में पोस्टिंग हुई थी, तो वहां पर स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट रूल था कि पार्टी में सब लोग दारू पिएंगे, सबके लिए शराब मंगाई गई। अब वहां पर मुझे ये पता, हम लोग ट्रेनिंग में एक साथ थे जो नहीं पीते थे शराब, तो उनके पास वो वॉन्ट पावर नहीं आया वहां कहने के लिए कि नहीं। तो मुझे अभी भी याद है कि सबके लिए वहां पर शराब का इंतजाम किया गया था, तो मेरे सामने भी उन्होंने एक ग्लास और ओल्ड मॉन्क रम रख दिया। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लेने वाला। तो सभी लोग को लगा कि ये जो है ये हमारे पार्टी को बर्बाद करेगा, क्योंकि अक्सर ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि यदि तू पापी मैं भी पापी तो जश्न मनेगा, फिर तब जलसे होंगे। जलसे कब होंगे, जब दोनों में कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं एक दूसरे को करेगा कि तो तू नहीं पी रहा, तो तेरे को नहीं पीते हुए देख हमको क्या लगेगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो क्योंकि वो हम लोग डिफेंस में थे, वायुसेना में, तो वहां पर सब देशभक्ति की बातें भी होती रहती हैं साथ साथ दारू पीते हुए, तो गाने गा रहे थे, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे रहेगा हिंदुस्तानी। दारू पीते हुए बोल रहे थे। तो फिर हमने भी गा दिया, सुनो दारू पीने वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे रहेगा नींबू पानी। और उनको जाकर नींबू पानी लाना पड़ा। तो मैंने देखा जो कुछ मेरे बैचमेट्स थे, दे डिडंट हैव दैट वॉन्ट पावर, सो दे गेव इन टू, एंड दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर इनिशिएशन इन टू लिकर, इफ यू अंडरस्टूड। तो धर्म हमें क्या सिखाता है, दोनों चीजें, और शुरुआत कहां से होती है कलयुग के अंदर, वॉन्ट पावर। इट बिगिंस विथ व्हेन, व्हाट टू से नो टू, एंड ऑल्सो हाउ टू से नो टू। सो देयरफॉर धर्म हैज जस्ट दीज टू बेसिक सीक्रेट्स विच बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर सो मेनी पीपल टू फॉलो इवन इन अ वेरी सिंप्लिस्टिक वे। चाणक्य पंडित उन्होंने एक बहुत सुंदर लॉजिक प्रस्तुत किया। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या यह अध्यात्म आपको सफलता की सीढ़ी पर ले जाएगा? विल स्पिरिचुअलिटी कीप यू एम्बिशियस? अब देखिए, इसकी डेफिनेशन अगर हम समझने की कोशिश करें, किसको हम कहेंगे कि वो एम्बिशियस है, किसको हम कहेंगे कि वो अपने विषय में सोच रहा है कि कैसे मैं सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ मैं उस मुकाम पर पहुंचूं जहां पर लोग मेरी वाहवाह करें। तो कुछ साल पहले बंबई में एक विद्यार्थी मुझे प्रश्न पूछ रहा था, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस मेकिंग यू एम्बिशियस? तो उत्तर में मैंने उस विद्यार्थी को पूछा, ओके आई विल पुट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ यू वन एग्जाम्पल दैट अ डेली वेज वर्कर ही प्लान्स हिज वीक कि एक हफ्ते में उसको कितनी मजदूरी मिलने वाली है, और एक जो तनख्वाह मिल रही है उसको महीने की वो साल भर प्लान करता है। तो दोनों में एम्बिशियस ज्यादा कौन हो गया? हु इज मोर एम्बिशियस? वन हु प्लान्स जस्ट द वीक अहेड और वन हु प्लान्स द ईयर अहेड? हु इज मोर एम्बिशियस? वन हु प्लान्स द ईयर अहेड इज मोर एम्बिशियस। वॉट इफ समबडी प्लान्स 5 years अहेड? जैसे मैं जब न्यूयॉर्क गया था 2005, तो वहां पर सेंट्रल पार्क है न्यूयॉर्क में, और वो सेंट्रल पार्क इतना बड़ा है, मेन न्यूयॉर्क सिटी में इतना बड़ा है कि एक एंड से दूसरे एंड आप अगर अपनी जपमाला लेकर चलोगे निकलोगे तो 16 माला पूरे हो जाएंगे दूसरे एंड तक पहुंचने तक, इतना बड़ा है वो। वो अलग बात है, वहां पर सब कुत्तों को लेके ज्यादा घूमते रहते हैं या कुत्ते मालिक को लेके घूमते हैं, ये कहना ठीक रहेगा। तो वहां पर सेंट्रल पार्क में आप एंट्री करो तो बहुत बड़ा एक साइन बोर्ड है, उस साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इस सेंट्रल पार्क का डिजाइनिंग जिन्होंने किया, जो लैंडस्केपिंग वगैरह और जिन्होंने इसका डिजाइनिंग किया, उन्होंने 200 साल आगे ये सेंट्रल पार्क के इस्तेमाल कैसे होगा सिटीजन्स के लिए जो यहां पर आके बसेंगे, और उस समय एक भी वहां पर स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग नहीं, न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं हम, न्यूयॉर्क। तो उन्होंने एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 200 साल आगे ये सेंट्रल पार्क का इस्तेमाल कैसे होगा इसके विषय में 200 साल पहले सोचा। इसको यदि हम कहें बीइंग एम्बिशियस, तो धर्म हमें क्या सिखा रहे हैं कि कैसे आप आपका अगला जीवन अभी सुधारो। कोई अगर बोल रहा है कि मैं ये कोचिंग क्लास में जा रहा हूं, ये ट्रेनिंग ले रहा हूं, ये कोर्स ले रहा हूं ताकि 5 साल में मुझे ये डिग्री मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, वहां जाके मैं सेटल हो जाऊं, तो कोई यदि हमसे पूछे कि आप लोग ये हरे कृष्ण में क्या तैयारी कर, हम तो गोलोक वृंदावन में सेटल होने का सोच रहे हैं, आप तो खाली यहां न्यूयॉर्क और यूके और यहां वहां जाने का सोच रहे हैं, हम तो गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक संसार जहां परमानेंट निवास है, कोई देश निकाला नहीं। हु इज मोर एम्बिशियस? One who plans to go to spiritual world or one who plans simply to loiter, Prabhupada कहते थे, to loiter within this material world. तो चाणक्य पंडित कहते हैं, ठीक विपरीत जो चाणक्य पंडित कहते हैं आजकल की सोच है। चाणक्य पंडित कहते हैं, यदि इंद्रिय भोग आपके सामने आए तो समझ लेना चाहिए, ये समझो उसको किस दृष्टिकोण से देखो। इस दृष्टिकोण से देखो कि अनगिनत जन्म पड़े हैं इसको भोगने के लिए। आत्म साक्षात्कार की कोई सुविधा सामने आए तो समझना चाहिए कभी भी मैं खत्म हो सकता हूं, अभी इसको अपना लो। ये उनका लॉजिक एम्बिशियस होने का। और आजकल क्या है, ठीक विपरीत, लोगों को आप कहो कि भाई गीता के ऊपर हमारे यहां पर चर्चाएं होती हैं, सत्संग होता है, तो एक व्यक्ति तो कहा अरे गीता में ही तो कहे हम तो अमर हैं, आत्मा है पहले तो, और आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, और आत्मा ही तो गीता समझ सकता है, आत्मा ही तो भक्ति कर सकता है, तो अमर है तो फिर इत्मीनान है, फुर्सत से करेंगे, ये जन्म नहीं अगले जन्म, अगले जन्म। आपके भगवान ही तो कहते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। और जब इंद्रिय भोग का मौका लगता है तो वहीं चौका लगाते हैं तुरंत। हाँ, इंद्रिय भोग अभी प्राप्त हुआ है, चार्वाक मुनि क्या कहते हैं, अभी इसको इस्तेमाल कर आनंद भोग लो, पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं। तो जो चाणक्य पंडित इनका लॉजिक था उसका ठीक विपरीत, उसको कहते हैं धर्मस्य ग्लानी। Therefore, when you prevent and prepare using dharma, you are the most ambitious. And who is considered to be intelligent? One who is ambitious. तो परीक्षित महाराज का उदाहरण हम लेंगे। प्रिपरेटरी कोर्स, जो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, प्रिपरेटरी कोर्स फॉर हिज डेथ। जब परीक्षित महाराज को समाचार मिला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है तक्षक के डंक के वजह से, उन्होंने तुरंत सब कुछ त्याग कर वो चले गए गंगा के तट पर, और सुखदेव गोस्वामी उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। अब यहां पर परीक्षित महाराज सिखा रहे हैं कि जब मृत्यु का नोटिस मिलता है तो किस दिशा में हमें अपने आप को ले जाना है। और प्रभुपाद कहते हैं कि उनको तो 7 दिन का नोटिस था, हमारे केस में कुछ पता नहीं कि अगले 7 दिन छोड़ दीजिए, 7 घंटे छोड़ दीजिए, 7 मिनट, 7 सेकेंड। आप लोग हो गए प्रभु जी बाहर इतना बना है डिनर, उसका क्या होगा, वो आप खाओगे क्या? इसलिए सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठिर महाराज, जो कि धर्मराज, युधिष्ठिर महाराज कौन है, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम् शेष स्थावरम इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अथ परम, कि हर क्षण, अहनि अहनि का ट्रांसलेशन इस प्रकार से किया गया है कि हर दिन, कलयुग में तो हर क्षण, हमने वो एक स्लाइड दिखाया था कि मृत्यु उसका रियल टाइम में, हर क्षण, हर क्षण गच्छन्ति यमालयम, यम के आलय में हर क्षण कितने जीव मर मर कर जा रहे हैं या ले जाए जा रहे हैं यमदूतों के द्वारा, परंतु शेष स्थावरम, जो शेष बचे हुए हैं, जैसे हमारे प्रभु जी ने उदाहरण दिया था बकरी का, श्रीवास प्रभु आए थे, उन्होंने उदाहरण दिया था बहुत सुंदर उदाहरण, कि कसाई घर में लाइन से बकरियां खड़ी हैं बाहर, कसाई घर के बाहर खड़ी हैं और उनको घास खिलाया जा रहा है, नहीं तो नहीं खड़ी रहेंगी। क्यों लाइन से खड़ी हैं? घास मिल और बहुत ताजा घास मिलता है और सब मग्न है, निमग्न है घास खाने में। एक भी बकरी ये नहीं देख रही कि लाइन कहां जा रही है, कौन सी लाइन में खड़े हो, कोई नहीं देख, घास है ना। ये चार्वाक फिलॉसफी। अरे कौन से कन्वेयर बेल्ट में है तुम, कौन सी लाइन में हो, नहीं देख रहे, खाली घास घास घास। हाँ अभी तो मिल रहा है ना इंद्रिय भोग, अभी तो इतना पैसा मिल रहा है, नाम शौहरत ये वो सब कुछ अभी मिल रहा है, बस मुझे याद है हम लोग हमारे पूरी एक जो पूरी बटालियन थी उनका एक एक उनकी एक पार्टी हुई थी, तो उस पार्टी में हमारे जगजीत सिंह इनको बुलाया था, जगजीत सिंह अंदर, तो सब लोग अभी उनकी कई ऐसी गजलें जिसके अंदर जीवन की सच्चाई बताई गई, लेकिन सब लोग हाथ में जाम ले हुए, शराब लिए हुए, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, उगा रहा है हारमोनियम पर, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, वाह वाह वाह। तो होते ना जो गजल सिंगर बार बार रिपीट करते हैं, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, तो एक खड़ा हुआ, मेरी औरत भी ले लो। उसने आधी बोतल खत्म कर दी थी। तो चाहे कोई कितना भी ये फिलॉसफी सुन ले, दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, सब ले लो, लेकिन जब घास सामने आता है तो वो घास को चरते 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 ये किसी को अंदाजा नहीं होता है कि ये लाइन कहां पर जा रही है। और वो कसाई जो है मृत्यु, मृत्यु जो है वो कसाई के रूप में वो धार लगाते हुए जो गर्दन काट रहा है हर एक बकरी या बकरा, बलि का बकरा बोलते ना, तो वो बाहर जो बकरे खड़े हैं उनको अंदर का जो खून खराबा है उसको देखने नहीं देता। इसलिए आजकल देखो समाज में सब कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि शेष स्थावर में छन्ति, उस प्रकार से ऐसा दिखाया जाता है कि बस जिए जाओगे जिए जाओगे जिए जाओगे, इतना जीवन पड़ा ऐसा लग रहा है, और ऐसा प्लान करते हैं कि 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी सिम कार्ड ले रहा है लाइफ टाइम पैकेज वाला। एडवर्टाइजमेंट ऐसे हुए हैं, एक पैर क्या दोनों पैर कब्रों में है, लेकिन सिम कार्ड चाहिए लाइफ टाइम वाला। अरे तो लाइफ कितना बचा है तेरा। एक युवती ने एक बूढ़े से शादी की, युवती ने बूढ़े से शादी की, तो युवती को पूछा गया कि भाई तूने क्या देखा इस बूढ़े के अंदर, तो उसने कहा दो चीज, एक तो इनकम और दिन कम। एक तो मैंने इसकी इनकम देखी और इसके दिन कम। तो यही हो रहा है, इनकम बढ़ाए जा रहे हैं, इनकम बढ़ाए जा रहे हैं, पता नहीं दिन कितने कम होते जा रहे हैं उसके साथ साथ। तो इनकम से ज्यादा गौर करना है हमको दिन कम, दिन कितने कम है। तो परीक्षित महाराज ने अपने सुंदर उदाहरण से दिखाया है कि धर्म सवई पुमसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधो शक्जे अप्रतिहता, इस प्रकार की भक्ति अहैतुकी और अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, जो कि अपने अंतरात्मा परमात्मा और भगवान को संतुष्ट करे, उसे कहते हैं परो धर्म, सबसे ऊंचा धर्म। अब श्रील प्रभुपाद ने जब धर्म की व्याख्या, ये जो अंतिम पांचवी व्याख्या की, उसके अंदर प्रभुपाद ने मनुष्य जीवन की अधोगति कहां से शुरू होती है, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि सबसे ऊंचे पायदान पर मनुष्य वो कौन से होते हैं जो श्रवण करने से धर्म का पालन शुरू कर देते हैं, जस्ट बाय हियरिंग। तो उन्होंने सुन लिया कि धर्म क्या है अधर्म क्या है और पालन शुरू कर दिया। प्रभुपाद कहते हैं उसके निचले स्तर पर जो कहते हैं कि नहीं 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 मुझे देखना है, केवल सुनने से नहीं होता, मुझे दिखाओ, इसलिए हमने पावर पॉइंट भी चालू किया है, तो देख भी लो। तो केवल सुनना नहीं देखना भी, तो ये सेकंड लेवल है, निचला स्तर। थर्ड है, नहीं मुझे केवल सुनने और देखने से नहीं समझ में आएगा, मुझे अनुभव करना है। कोई कहता है दारू पीना बुरा है, शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए बुरा है शराब पीना, नहीं मुझे देखना है कि जो दारू पीकर अस्पताल में पीड़ित हैं मेरे को दिखाओ, तब मानूंगा। दिखा दिया, नहीं 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 मुझे वो अनुभव कर कर देखना है कि क्या कैसे पियो। और प्रभुपाद कहते हैं जो सबसे गिरे हुए नीचे, जो न सुनने से न देखने से न अनुभव करने से अपने आप को सुधार रहे हैं, और ये नाम मैंने दिया है, प्रभुपाद ने नहीं दिया है, इसको कहते हैं द्विपाद पशु, एनी मैन, जानवर और इंसान का समन्वय, कि जो अपने इस मनुष्य जीवन को इस्तेमाल नहीं कर रहे, मृत्यु की तैयारी और मृत्यु के पश्चात के जीवन की तैयारी, वो सबसे निचले स्तर पर, न सुनकर न देखकर न अनुभव करकर। अब ये आपने बहुत बार सुना होगा, हमारे धर्मशास्त्रों का एक बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण सूत्र है, जो प्रभुपाद ने ये अंतिम पांचवी व्याख्या की है उसके संदर्भ में, धर्मो रक्षति रक्षितः। कितनों ने ये सूत्र सुना है पहले? नहीं, बहुत पहली दफा सुन रहे हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, तुम धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से चुनाव आ रहे हैं, कि हम किसका चयन कर कर किसको कहां कौन सी गद्दी पर बिठा रहे हैं, समझ में आएगा कि फिर कौन किसकी रक्षा किस प्रकार से करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र सिद्धांत हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कि इसकी थोड़ी हम चर्चा भी करेंगे कि कैसे भगवान ने धर्म को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना कर दिया है हमारे लिए, कि जिसके अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन हमारे लिए धर्म के द्वारा उपलब्ध करा कर दिया गया। तो ये जो सिद्धांत है, इसको यदि हम हमारे शरीर से समझने की कोशिश करें, तो धर्मो रक्षति रक्षितः, और यदि हम अपने शरीर को देखें, शरीरो रक्षति रक्षितः। कैसे? कि जब हम शरीर पर ध्यान देते हैं, शरीर को संभाल कर रखते हैं तो शरीर हमें सुख देता है। यदि कोई शरीर को मिसयूज करता है, खुद के शरीर को, जो भी अनशन जो भी खा लिया पी लिया ऐसा जीवन, तो उसके वजह से फिर क्या होता है कि फिर ये शरीर ही उसको और दुख में डालता है। पहले शरीर को दुख में डाला, इसलिए प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में लिखते हैं, इन कलयुग मोर पीपल विल डाई ऑफ ओवर ईटिंग देन मैल न्यूट्रिशन एंड रॉन्ग काइंड ऑफ ईटिंग। तो होता क्या है कि शरीर के लिए जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, आजकल का पूरा वातावरण उस प्रकार से मनुष्य समाज ने बना लिया है कि हवा पानी भोजन सब कुछ रिश्ते संबंध ये सारी चीजें ऐसी कृत्रिम बना ली है कि ये शरीर को सब कुछ इतना आर्टिफिशियल दिया जा रहा है, तो उसको नेचुरली जो अगर कोई सुखी भी होना चाहता है, शरीर से सुख भी प्राप्त करना चाहता है, तो वो भी नहीं मिल रहा उसको आजकल। अध्यात्म तो छोड़ दीजिए, मोक्ष तो छोड़ दीजिए, इवन सेंस ग्रेटिफिकेशन इज हार्डली अवेलेबल बिकॉज द बॉडीज आर टोटली डिस्ट्रॉयड। तो धर्म भी उसी प्रकार से उन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है व्यक्तिगत रूप से। यदि एक परिवार धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उस परिवार की रक्षा करता है। यदि कई परिवार मिलकर धर्म की रक्षा करते हैं, एक समाज धर्म की रक्षा करता है, तो धर्म उस समाज की रक्षा करता है। पूरा राज्य, पूरा देश, पूरा विश्व यदि धर्म की रक्षा करे तो इस सिद्धांत के अनुसार धर्म पूरे मनुष्य समाज पूरे विश्व की रक्षा धर्म करता है। धर्म रक्षति रक्षितः, ये सिद्धांत प्रभुपाद दे रहे हैं ये अंतिम उनकी व्याख्या में। तो अंग्रेजी में इस सिद्धांत को कहते हैं द फिलॉसफी ऑफ रेसिप्रोसिटी। घबराइए मत, वो हिंदी में भी हमने लिखा है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मींस आदान प्रदान, जिसको कहते हैं आदान प्रदान पारस्परिक सिद्धांत। थोड़ा ध्यान दीजिए, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको कि भगवान ने धर्म को इस प्रकार से निर्माण कर दिया है हमें कि हम जब धर्म का पालन करेंगे तो धर्म की ओर से एक पारस्परिक सिद्धांत स्थापित होगा हमारे लिए, हमारी समृद्धि के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सफलता के लिए। समृद्धि, सुरक्षा और सफलता, ये तीन चीजें पारस्परिक हैं। जब हम धर्म को सफल बनाएंगे, जब हम धर्म को समृद्ध करेंगे, जब हम धर्म की सुरक्षा करेंगे, तो धर्म जो है ये तीन चीजें उपलब्ध कराकर हमें देते हैं। अब ये क्यों, कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि भाई क्यों केवल धर्म की ओर से उनका सिद्धांत क्यों नहीं लागू किया जाता, हमको क्यों करने की जरूरत है, क्यों भगवान ने इसको पारस्परिक बनाया है। Why the principle of धर्म रक्षति रक्षितः is the principle, the philosophy of reciprocity? क्योंकि वहां से भगवान ये देखना चाहते हैं कि कौन से जीव हैं जो स्वेच्छा से धर्म का पालन कर रहे हैं। ये जो आदान प्रदान का सिद्धांत है, इसकी बुनियाद किस पर है, स्वेच्छा, स्वतंत्र रत्न जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। हम किसका चयन करते हैं और चयन करने के पश्चात फिर वहां से उसका जब आदान प्रदान, जैसे कि जो दो व्यक्ति विवाह के संबंध में जुड़ते हैं तो उन्होंने चयन किया, ठीक है मैं चयन कर रहा हूं इस व्यक्ति के साथ जीवन बिताने, लाइफ पार्टनर जिसको कहते हैं, जीवन साथी। तो चयन करने के पश्चात फिर होता क्या है विवाह, उन्होंने पहले चयन किया, एक दूसरे का चयन किया, दे चोज ईच अदर एंड देन स्टार्ट्स रेसिप्रोसिटी। उसके बाद वो अलग बात है कि फिर कहानियां बदल जाती हैं, परंतु आइडियली उनके अंदर का जो पारस्परिक सिद्धांत है वो बढ़ते रहना चाहिए। देयरफॉर लव इज रेसिप्रोकल, जस्ट लाइक धर्म इज रेसिप्रोकल, लव इज रेसिप्रोकल। आज एक और वीडियो आपको दिखाएंगे हम धर्म। ये एक सच्ची घटना हुई है अमेरिका में। एक व्यक्ति ने एक्सपेरिमेंट किया। अब यहां पर आप इस भिखारी को देखोगे तो आप थोड़े हक्का बक्का रह जाओगे कि वहां के भिखारी इस प्रकार के हैं, लेकिन वो भिखारी है वहां का, अमेरिका का है, इसलिए थोड़े कि भिखारी भी स्टैंडर्ड के होते हैं। तो ये एक व्यक्ति, उसने एक भिखारी के साथ एक्सपेरिमेंट किया, होमलेस पर्सन उसको कहते हैं। तो इस भिखारी को उसने लॉटरी की टिकट दी और उस लॉटरी की टिकट में उसको जो इनाम मिलता है इस भिखारी को, तो एक प्रकार से इस व्यक्ति ने भिखारी को लॉटरी की टिकट दी, लेकिन ऐसी टिकट दी जिसमें वो जीत चुका था। जिस लॉटरी टिकट में वो जीत चुका था वो टिकट उसको दी, उसको ये नहीं कहा कि ये विनिंग नंबर है, ये नहीं बताया उसको। तो उसने अपने तरफ से क्या किया, यहां पर हम कौन से मुद्दे पर हैं, रेसिप्रोसिटी। तो भिखारी को जब वो प्राप्त होता है तो हाउ देयर इज रेसिप्रोकेशन,
I'm not kidding you, man.
Hey guys, so for the last couple of weeks, I've been noticing a homeless guy hanging around this local shopping center that I live next to. And from what people have told me is that he's a nice and respectable guy. So today, I'm going to make him think that he just won the lottery. I'm going to give him this supposed winning lottery ticket, take him to the store, and see how much money is won from this ticket. But little does he know is that this is a losing lottery ticket, and the store clerk is in on it. Hope you guys enjoyed the video.
Listen, man, I don't really have any money to give you, but I do have this winning lottery ticket. I don't really know how much I won. I can give this to you. Okay?
You sure, my man?
Yeah, I could take you to the store and we could get this cash.
All right.
How's that sound?
That's cool, my friend.
Let's do this, brother.
Hello, how are you?
I just want to see if we won.
Guess what?
You got $1,000.
$1,000?
You won $1,000.
You're kidding me, right? You're kidding me, right?
I'm not kidding.
Come on, man. You're kidding me. You're kidding me.
You're so lucky.
Okay, here's your money. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
I'm not kidding you, man.
9, 10, okay? Okay, thank you, good luck. I want to share it, friend.
Aw, oh, come on, that's all yours, man.
Just share it,
no, that's all yours, man.
It's right here, it would be enough for me.
It's all good.
I would like to share it with you, big guy.
You earned it. You won the lottery, man. Here. Get out of here.
I've been doing this for a long time. A long time. I never, never, a friend has somebody do what you just did out right here. Never.
Will you go on a date with me?
I'm sorry, I'm married.
Well, he doesn't have to know.
So, आपने देखा कि उस भिखारी को जब $1,000 मिले तो उसने स्पॉन्टेनियसली उसमें से आधा पैसा उसको देना चाहा. वो मेन पॉइंट था. देखा आपने, गौर किया उस पर. इसको कहते हैं द फिलॉसफी ऑफ रेसिप्रोसिटी, कि उस व्यक्ति ने कुछ थोड़ा धर्म किया, दान दिया उसको, और जैसे उसने दान दिया वो इस अपेक्षा में नहीं था कि ये भिखारी आधी रकम वापस लौटा कर देगा. सोचो एक भिखारी. तो मुद्दा ये है कि यदि किसी भिखारी के ऊपर कोई व्यक्ति धर्म का कोई कार्य करता है तो एक भिखारी यदि प्रतिसाद कर रहा है, यदि रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो फिर धर्म क्यों नहीं, एक्चुअल मूर्तिमान धर्म जो भगवान है वो क्यों नहीं रेसिप्रोकेट करेंगे. इसलिए जो प्रभुपाद ये अंतिम सिद्धांत सिखा रहे हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः. व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ ऐसा हुआ, जब हम लोग सिलेक्ट हुए थे एयरफोर्स टीम, लॉन टेनिस की एयरफोर्स टीम में, तो तब तक हम लोग एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इस प्रकार के हमारे टूर्नामेंट्स होते थे. और उस दौरान हमको नेशनल्स में पहुंचना था कि नेशनल लेवल पर हम पहुंचे एयरफोर्स की टीम. तो नेशनल लेवल पर पहुंचने के लिए हमको एक जो नेशनल लेवल का कोच था दिल्ली में, वो चाहिए था हमें. परंतु वो कोच हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहा था. हमें उसका कांटेक्ट पता था लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था. हमने बहुत कोशिश की, वो मिल नहीं पा रहा था. तो ये सच्ची घटना मैं आपको बताऊंगा, कुछ इसी प्रकार से, इसी संदर्भ में संबंधित है. तो मैं DLTA जो वहां के दिल्ली के लॉन टेनिस कोर्ट्स हैं, वहां जाने के लिए मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, हमारे एयरफोर्स के स्टेशन के बाहर बस स्टॉप पर. तो मैंने देखा एक भिखारी जैसे दिखते हुए एक दंपति, वो लोग हरियाणा के थे और वो लोग वहां बैठे हुए थे. तो उसमें से जो बूढ़ी महिला वो मेरे पास आई, और केवल मैं और वो दंपति, बस हम लोग तीन ही थे बस स्टॉप पर. तो आई और उसने मुझसे पूछा कि आपके पास कुछ पैसे होंगे, हमें फिर से हमारे गांव जाना है, हम लोग यहां पर आए थे और हमारे पैसे वगैरह सब चोरी हो गए, अभी हमारे पास गांव में जाने के लिए पैसे नहीं है. तो पता नहीं मुझे उसके अंदर सच्चाई लगी. कई बार होता है, एक अंदर की फीलिंग आती है, आपको लगता है कि इसके अंदर सच्चाई है. तो मेरे पर्स में उस समय कुछ 1500 रुपए थे, तो मैंने पूरे 1500 निकाल के दे दिया. वो तो, उनको तो हार्ट अटैक ही आना था कि ये, वो तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. तो पूरे 1500 मैंने, पूरा पर्स खाली हो गया मेरा, फूटी कौड़ी नहीं अभी. अब मुझे DLTA पहुंचना है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं थोड़ा जॉगिंग कर चलकर चला जाऊंगा. तो पूरे वो टेनिस के किट में था, मेरा पीछे वो रैकेट वगैरह सब था, मैं जॉगिंग करते हुए जा रहा था. पीछे से हॉर्न बजा, एक गाड़ी रुकी, और जो ड्राइवर था उसने मुझे पूछा कि आप DLTA जा रहे हैं, क्योंकि उसने मेरे टेनिस रैकेट को देखा और मैं उसी रोड पर था. तो मैंने कहा हाँ, चलो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँ. तो मैं बैठा, तो मैंने उनका परिचय पूछा. आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस नेशनल टेनिस कोच की खोज में हम थे एक साल से, वही था वो. और फिर उससे जो जान पहचान हुई, आगे चलकर वो रेडी हो गया, वो हमारे एयरफोर्स यूनिट में आकर हमारी टीम को कोच करने के लिए रेडी हो गया. और उसके पश्चात फिर एक डेढ़ साल में हमारी पूरी टीम नेशनल लेवल पर पहुंची. और इसकी शुरुआत फिर मैं सोच रहा हूं कि यदि मैं उस समय वो पर्स खाली नहीं करता तो मैं नहीं चलता, मैं बस से जाता. लेकिन क्योंकि वो पर्स खाली हुआ तो मुझे चलना पड़ा, और क्योंकि मुझे चलना पड़ा तो किसी ने मुझे लिफ्ट दी, और जिसने लिफ्ट दी वो व्यक्ति जिसकी खोज में हम एक साल से थे वही निकला. इसे कहते हैं द फिलॉसफी ऑफ रेसिप्रोसिटी, पारस्परिक सिद्धांत, धर्म रक्षति रक्षित. ये श्रील प्रभुपाद हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये जो पारस्परिक सिद्धांत है, जैसे कि आपने सुना होगा प्रतिसाद, तो साद प्रतिसाद या क्रिया और प्रतिक्रिया, चाहे वो धर्म हो चाहे वो अधर्म हो. तो धर्म का सिद्धांत यदि ये है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, तो फिर उल्टा सिद्धांत, विपरीत सिद्धांत क्या होगा कि जो अधर्म का पालन करेंगे वो अधर्म उनका विनाश करेगा. यदि धर्म की रक्षा करने वाले धर्म के द्वारा सुरक्षित रहेंगे तो जो अधर्म का पालन करने वाले अधर्म के द्वारा मार जाएंगे, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु इत्यादि. तो यदि हम पारस्परिक सिद्धांत के कुछ उदाहरण लें तो सबसे पहला उदाहरण गोवर्धन लीला का है कि गोवर्धन लीला में क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बात सारे ब्रजवासियों ने मानी कि गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, तो जब विकट परिस्थिति आई तो भगवान ने उनकी रक्षा की गोवर्धन धारण करके. तो गोवर्धन लीला में हम देखते हैं ये धर्मो रक्षति रक्षितः सिद्धांत. फिर द्रौपदी का उदाहरण है कि द्रौपदी ने एक समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी सेब काटते समय, तो द्रौपदी ने अपने आंचल को फाड़कर पट्टी बना दी. तो भगवान ने कहा कि एक दिन मैं इसका प्रतिसाद करूंगा तुम्हारे साथ. और भगवान ने किस प्रकार से प्रतिसाद किया कि साड़ी के रूप में भगवान अवतरित हुए और द्रौपदी की लाज बचाई. और द्रौपदी का जो गुणगान होता है, जो तुरंत द्रौपदी के विषय में कभी भी चर्चा होती तो यही होती कि जिनकी लाज भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बचाई साड़ी के रूप में अवतरित होकर. तो ये दूसरा उदाहरण है कैसे रक्षा की द्रौपदी की भगवान ने. फिर गजेंद्र का, गजेंद्र ने अपने पिछले जन्म में धर्म की रक्षा की थी. इंद्रदम्न महाराज वो थे राजा, और वो ऐसे राजऋषि थे जिन्होंने अपने पूरे राज्य में धर्म की स्थापना, इसलिए कुछ कारणवश यदि वो गजेंद्र एक हाथी भी बने अगले जन्म में, परंतु जो धर्म की रक्षा उन्होंने पिछले जन्म में की वो धर्म ने उनको बचा लिया. हालांकि मगरमच्छ के मुंह में वहां से उसके वजह से भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्हें भगवत धाम लेकर गए. चौथा उदाहरण जगाई और मधाई में जगाई का है कि नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया मधाई ने, परंतु जगाई ने दूसरे प्रहार से रोक दिया उसको. वो दूसरी बार प्रहार कर रहा था मधाई, जगाई ने रोका. और जब चैतन्य महाप्रभु को यह पता लगा कि जगाई ने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की, तो चैतन्य महाप्रभु ने जगाई की रक्षा की. तो यहां पर भी कौन सा सिद्धांत स्थापित किया, धर्मो रक्षति रक्षितः. अजामिल का उदाहरण भी दिया जाता है कि अजामिल जो कि इतना बड़ा पापी बन गया, परंतु उसने अपने आखिरी पुत्र का नाम नारायण रखा. क्यों? क्योंकि साधु गण आए और उन्होंने निवेदन किया, अजामिल की पत्नी कि तुम इसका नाम नारायण रखो. और अजामिल ने नारायण शिला की पूजा की थी पहले, उसके पतित होने से पहले. इसलिए इतनी सी रक्षा जो उसने की या आदान प्रदान उसका हुआ, उसके मरण शैया पर विष्णुदूत पहुंच गए उसकी रक्षा करने के लिए. और फिर अंतिम उदाहरण पुतना का कि पुतना जो कि इतने कुत्सित हृदय वाली आई जो भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने देखा कि ये मुझे कुछ पिलाने आई है. केवल वही देखा भगवान, विषैला दूध ये सब नहीं देखा, लेकिन पिलाने आई एक मात्र भाव की तरह. तो भगवान ने उसकी रक्षा की इस हद तक कि पुतना को गोलोक वृंदावन में धात्रीपद दे दिया. तो ये सब पारस्परिक सिद्धांत के उदाहरण. इसलिए श्रील प्रभुपाद जो ये अंतिम व्याख्या धर्म की किए हैं, तो एक उदाहरण से समझाना चाहेंगे कि जैसे एक फोटो फ्रेम होती है, तो धर्म की तुलना एक फोटो फ्रेम से की गई है कि फोटो फ्रेम क्या करती है, सुरक्षा, उस फोटो की सुरक्षा और उसके साथ उसकी सुंदरता बढ़ाती है. जैसे यहां पर ये सुंदर भगवान राधा कृष्ण की फोटो है, तो जो फोटो फ्रेम है ये दो कार्य कर रहे हैं. इट इज प्रोटेक्टिंग एंड एनहैंसिंग द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंटिंग. सिमिलरली धर्म नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स बट ऑल्सो ब्यूटिफाइज अवर लाइफ. इसलिए भगवान कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य. और अब हम जो श्रील प्रभुपाद ने 5 परिभाषाएं दी धर्म की, उसके अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं कि ये 5 तरीके हैं धर्म को समझने के, धर्म को अपने जीवन में अपनाने के. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तो आप लोगों के लिए खुश खबर है कि इस अप्रैल के महीने में जो अभी शुरू हुआ है, बड़े बड़े हमारे दिग्गज प्रचारक आने वाले हैं. तो आपको एक उनका प्रेजेंटेशन बनाना पड़ा मुझे, इतने एक एक कर आ रहे हैं. तो अभी अगले ही हफ्ते रामनवमी का महोत्सव है, अगले मंगलवार को 8 तारीख को रामनवमी है. तो रामनवमी के इस पावन अवसर पर आ रहे हैं गोविंद प्रभु और श्रीमान गोविंद प्रभु जो हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के 4 जो प्रेसिडेंट्स हैं उसमें से एक हैं. तो उनके रूपरेखा इस प्रकार से रहेगी. 6 तारीख संडे है, तो संडे भागवतम क्लास से रामकथा प्रारंभ होने वाली है ये कमिंग संडे. तो 6 आप लोग नोट डाउन कर लो अभी, डेट्स स्पीकर्स टाइम वेन्यू तो यही है. तो 6-8 अप्रैल रामनवमी रामकथा, 8 अप्रैल तो रामनवमी है, उस दिन गोविंद प्रभु रहेंगे. और फिर 3 दिन की इस रामकथा के पश्चात अगले बुधवार, हम पहले अनाउंस किए थे लेकिन उस समय इनका पोस्टपोन हो गया था ना, और पोस्टपोन होके अब फाइनल हुआ है. तो भक्ति चारू महाराज वो आ रहे हैं अगले बुधवार 9 तारीख, नेक्स्ट वेडनेसडे. और उनका टॉपिक उन्होंने दिया है आर्ट ऑफ डाइंग, हम उसकी चर्चा आज बहुत किया कर रहे थे, द वे टू इमोर्टैलिटी. हिंदी में होगा उनका प्रवचन, लेकिन वो टॉपिक उन्होंने इंग्लिश में दिया है. 7:30 PM नेक्स्ट वेडनेसडे. तो भक्ति चारू स्वामी, और तो हमारा पूरा 4 दिन इस प्रकार से इन अ रो बिजी, 6th-9th. उसके पश्चात शुभ विलास प्रभु जो यहां पर पहले भी आ चुके हैं, एक और बहुत सुंदर प्रचारक राधा गोपीनाथ मंदिर के, वो आ रहे हैं 12 तारीख को. और 12 तारीख को वो यहां पर एक विशेष सेमिनार देने वाले हैं. इसका टॉपिक है 7 सीक्रेट्स ऑफ लास्टिंग फ्रेंडशिप. इसके अंदर ये सेमिनार इंग्लिश में रहने वाला है, क्योंकि पहले हम प्रेरणा के लिए उनको बुलाए थे, तो क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे थोड़े एग्जाम्स वगैरह में बिजी हैं, तो हमने सोचा कि जितने हमारे बाकी ग्रुप्स हैं, चेतना, प्रेरणा, उत्कर्ष, जागृति, IYCF, सब मिला के उनके लिए सेमिनार हम रखे हैं, क्योंकि टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है फ्रेंडशिप के ऊपर। तो 12 तारीख को सैटरडे को शाम को उनका ये सेमिनार रहेगा, और उसके पश्चात 13 तारीख को संडे मॉर्निंग भागवतम क्लास में भी उन्होंने एक टॉपिक दिया है, कॉस्ट ऑफ ऑफेंस, अपराध की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। तो ये संडे मॉर्निंग भागवतम क्लास में शुभ विलास प्रभु रहेंगे देने के लिए। उसके पश्चात भक्तिधीर दामोदर महाराज जो कि हर साल आते हैं वो आ रहे हैं, तो 19 अप्रैल को, इसी महीने की सैटरडे है, तो हमारे वासुदेव कृपा प्रभु उनके घर के जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनका जो वार्षिक महोत्सव मंदिर में मनाया जाएगा, भक्तिधीर दामोदर महाराज रहेंगे, तो वो 19 अप्रैल सैटरडे शाम 7:30 बजे, और उसके पश्चात 20 अप्रैल संडे मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम क्लास भी देंगे महाराज, और संडे फीस्ट भी शाम का उनका ही रहेगा। उसके पश्चात राधा गोपीनाथ प्रभु आ रहे हैं, हमारा सौभाग्य देखिए कि एक के बाद एक ये लोग सब राधा मदन गोपाल जी से आकर्षित हुए यहां पर आप लोगों की सेवा के लिए आ रहे हैं। 23 अप्रैल को बुधवार को और गुरुवार को उनका ये टॉपिक है, 2 दिन का सेमिनार है उनका, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उन्होंने ये बहुत जगहों पर लिया है, और मैं जो इनके टॉपिक को अटेंड किए हैं ऐसे ऑडियंस से मिला हूं, और वो लोग सब इतना गुणगान किए हैं इस टॉपिक का, द ट्री ऑफ लाइफ। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, हालांकि हम नोटिस बोर्ड पे भी लगाने वाले हैं। तो ये सारे बड़े बड़े दिग्गज ये सब टॉपिक्स देने के लिए हमारे शिशि राधा मदन गोपाल मंदिर में इसी महीने, एक महीने में इतने सारे आ रहे हैं। तो ये है हमारा समर बम्पर ऑफर, तो ये समर बम्पर ऑफर है, इसका लाभ लीजिए, और जो यहां पर उपस्थित नहीं है उनको भी आप इत्तला कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, श्री प्रभुपाद की जय।